अभिमन्यु इस वक्त कुछ भी करके इशिका को ईशानी की जिंदगी से पूरी तरह अलग करना चाहता था। उसने इशिका को ईशानी की तरह तैयार होने को कहा। इशिका तैयार तो हो चुकी थी, लेकिन उसके ऐसा करने पर युविका नाराज हो गई। युविका इस बारे में अभिमन्यु पर गुस्सा निकाल रही थी। वो अभिमन्यु से उसके प्लान के बारे में जानना चाहती थी, पर अभिमन्यु उसे कुछ नहीं बता रहा था। ये चीज युविका को ज्यादा इरिटेट कर रही थी। युविका अभिमन्यु से बात कर रही थी कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। सामने मौजूद शख्स को देखकर युविका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तुम? युविका हड़बड़ाकर बोली, तुम्हारी ये हालत किसने की? सामने दरवाजे पर तरुण खड़ा था। उसे पीटा गया था, उसके सिर से खून निकल रहा था। युविका ने फिर अभिमन्यु की तरफ देखा, जो हाथ बांधे एक्सप्रेशनलेस वहां खड़ा था। उसे देखते ही युविका सब समझ गई थी। युविका अभिमन्यु के पास जाकर दबी आवाज में बोली, ये कोई तरीका नहीं हुआ। तुम इसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हो? अगर इसने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो बेवजह रूही फंस जाएगी। युविका को अभिमन्यु से इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो तुम्हें लगता है ये इंसान प्यार से समझाने लायक है? अभिमन्यु ने भौंरे उठाकर पूछा। वो कुछ पल रुककर बोला, मुझे सब अपने तरीके से करने दो। अगर तुम इसे अपने सो कॉल्ड प्यार भरे तरीके से हैंडल करना चाहती हो तो सब तुम पर ही छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम ही देख लो, युविका ने जल्दी से कहा। वो भी अच्छे से जानती थी तरुण प्यार या दया करने के लायक बिल्कुल नहीं है। भले ही ईशानी उसे कुछ बताए ना, पर काफी बार वो उससे मिलने आई तब उसकी बॉडी पर मारने और जबरदस्ती करने से आए चोट के निशान मौजूद होते थे। युविका उससे पूछती थी तो ईशानी कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। इस वक्त युविका को कुछ पल के लिए भले ही तरुण पर दया आ गई थी, लेकिन उसने फिर अभिमन्यु के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो वो हर तरह से सही था। तरुण वैसा ही होना डिजर्व करता था। शायद अभिमन्यु ही उसके किए की सजा उसे अच्छे से दे सकता था, वरना रूही के लिए ईशानी कभी उससे बगावत नहीं कर पाती। वहीं युविका का इशारा मिलते ही अभिमन्यु धीमी कदमों से चलते हुए तरुण के पास आया और उसका मुंह कस के पकड़ लिया था। अभिमन्यु ने तरुण की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा, चुपचाप डाइवोर्स पेपर्स और प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मरने के बाद मुझे तुम्हारे साइन की जगह तुम्हारी थंबप्रिंट लेने पड़े। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उल्टा, मैंने तो तुम्हें उस दिन तुम्हारी पत्नी से मिलवाया था। जिंदा है ना वो? तरुण दर्द से कराहते हुए लड़खड़ाकर बोल रहा था। अभिमन्यु ने अपनी आदत के मुताबिक उसे सफाई देना जरूरी नहीं समझा। उसके कुछ न बोलने पर तरुण को चिढ़ हो रही थी। तभी उसकी नजर सामने मौजूद युविका और इशिका पर गई, जो ईशानी के गेटअप में थी। अपने सामने ईशानी को वहां देखकर तरुण का चेहरा गुस्से से भर उठा था। वो तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, अच्छा तो ये लड़की तुमसे ये सब करवा रही है? आखिर रिश्ता क्या है तुम दोनों के बीच में? मैंने तुम्हारी पत्नी को ढूंढकर तुमसे मिलवा दिया था, उसके बाद से वो फिर से गायब हो गई। कहीं तुमने ही तो उसे नहीं मारा था? अभिमन्यु राजवंश, तुम जैसे अमीर लोग दूसरे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। तुम्हारा इस लड़की के साथ चक्कर? तरुण अपने गुस्से में कुछ भी बकवास किए जा रहा था। उसके बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अभिमन्यु ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे उसके नाक से खून बहने लगा था। तरुण दर्द से जोर से चिल्लाया। अभिमन्यु ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, सबको अपने तरह समझा है क्या, जो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ? बोलते हुए अभिमन्यु रुक गया। तरुण भले ही गिरा हुआ इंसान हो, पर वो अपने मुंह से वो घटिया शब्द नहीं कहना चाहता था। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू करके कहा, तुम्हारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरा समय बहुत कीमती है। चुपचाप पेपर साइन करो और निकलो यहाँ से। जिंदा रहने का मौका दे रहा हूँ, यही काफी है। और मैंने पेपर साइन नहीं किए तो? जो होता है कर लो, लेकिन मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। मैं सबको जाकर बताऊंगा कि तुम दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। तुमने अपनी पत्नी को मारा है, वो भी किसी दूसरी औरत के लिए, तरुण ने अभिमन्यु को धमकी देते हुए कहा। हालांकि ऐसा कहते हुए उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। तरुण को इस तरह अभिमन्यु को ब्लैकमेल करते देखकर पृथ्वी ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, क्या ये इंसान भूल गया है कि ये किसके सामने खड़ा है और किसे धमकी दे रहा है? सीरियसली, ये अभिमन्यु राजवंश को चैलेंज कर रहा है। तरुण की इस बेवकूफी पर पृथ्वी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसे बस अभिमन्यु के इशारे का इंतजार था कि कब वो तरुण को उसकी इस गुस्ताखी पर सबक सिखाने का कहे। अभिमन्यु ने पृथ्वी को कोई ऑर्डर नहीं दिया, वो खुद ही तरुण के पास आया और उसे उठाकर बोला, तुम इन पेपर्स पर साइन नहीं करोगे? हाँ, नहीं करूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तरुण ने जवाब दिया। तरुण की नजरों में अभिमन्यु इस वक्त सिर्फ एक अमीर बिजनेसमैन के अलावा और कुछ नहीं था। उसे ये नहीं पता था कि अभिमन्यु को कोई बात मनानी होती थी तो वो सीधे तरीके के अलावा और भी कई तरीके जानता था, जैसे उसने युविका को अपने ही घर पर होस्टेज बनाकर रख लिया था। तरुण की इस बेवकूफी पर युविका ने सिर हिलाकर धीरे से बड़बड़ाकर कहा, इसे देखकर मुझे खुद की याद आ रही है, जब कल मैं अभिमन्यु से इस तरह जिद कर रही थी। लेकिन ये आदमी मार खाना और ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करता है। आई विश कि ये सब ईशानी के जिंदा रहते होता तो शायद ईशानी सुकून से अपनी जिंदगी रूही के साथ बिता पाती। ईशानी का सोचकर युविका की पलकें एक बार फिर से भीगने लगी थी। जब ईशानी जिंदा थी तब युविका यही चाहती थी कि कैसे भी करके ईशानी तरुण के चंगुल से आजाद होकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करे। आज ईशानी को आजादी तो मिल रही थी पर वो इस दुनिया में नहीं थी। युविका ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, उम्मीद है तुम जहां भी हो सुकून से हो। मुझे नहीं पता कि ये लड़की तुम्हारी बहन है या नहीं, पर इस बात का विश्वास है कि ये रूही का अच्छे से ख्याल रखेगी। तुम ना सही लेकिन तुम्हारी बेटी तुम्हारे बाद एक अच्छी जिंदगी बिताएगी। उस तरुण जैसे घटिया इंसान के साये में नहीं पलना होगा। रूही का सोचकर युविका शांत थी तो वहीं अभिमन्यु से बात करते हुए तरुण गुस्से में आगे आया और उसने ईशिका के बाल पकड़ लिए थे। वो उसके बालों को खींचते हुए गुस्से में बोला, मुझे तुम दिन रात ताना देती रहती थी कि मैं हमारी शादी में लॉयल नहीं हूँ। अब ये क्या चल रहा है? तुम खुद किसी गैर आदमी के साथ मुंह काला कर रही हो और मुझे बेवजह सुनाती रहती थी। अरे मैंने कम से कम किसी की जान तो नहीं ली। तुम दोनों ने मिलकर इसकी मासूम सी पत्नी को मार डाला। दर्द से ईशिका का चेहरा लाल हो गया था। वो तरुण को खुद से दूर धकेलती उससे पहले अभिमन्यु उसके पास आया और उसके बालों को पीछे से खींचकर उसे ईशिका से अलग किया। अभिमन्यु ने तरुण को बालों से ही पकड़े हुए उसका सिर वहां रखी टेबल से जोर से भिड़ाया। अब उसके माथे से भी खून आने लगा था। यू नो वॉट, तुम जैसे इंसान आराम से बात करना डिजर्व ही नहीं करते। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पेपर साइन करने हैं या फिर तुम्हारे थंबप्रिंट लेने के लिए तुम्हें जान से मार दूं? अभिमन्यु बेहद सर्द आवाज में बोला। इस वक्त उसका अंदाज काफी खतरनाक था जिसे देखकर तरुण घबरा गया था। तरुण को जबरदस्ती वहां लाने के चक्कर में अभिमन्यु के आदमियों ने उसे थोड़ा बहुत पीटा था लेकिन अभिमन्यु ने मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी। तरुण ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर कहा, मैं कर रहा हूँ साइन। साइन तो तुम्हें करने ही थे, पहले ही हाँ कह देते तो इतनी मार नहीं खानी पड़ती, अभिमन्यु ने जवाब दिया। फिर उसने पृथ्वी से इशारे से कुछ पेपर्स लाने को कहा।
तरुण को लगा कि अभिमन्यु उससे सिर्फ तलाक के पेपर्स पर साइन करवाएगा लेकिन उसके साथ कुछ और भी कागजात थे। तलाक के पेपर पर साइन करने के बाद तरुण हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोला, मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं, लेकिन ये कैसे पेपर्स हैं? तुम क्या करवाना चाहते हो मुझसे? अभिमन्यु ने उसकी तरफ घूर कर देखा और फिर इंटेंस वॉइस में कहा, ज्यादा कुछ नहीं, ये घर और कंपनी ईशानी की थी तो मुझे वापस चाहिए। ये रूही के नाम जाएगी और रूही की कस्टडी मेरे पास आएगी। अभिमन्यु ने जानबूझकर यहां ईशिका का जिक्र नहीं किया। पेपर्स में ईशिका का नाम भी लिखा हुआ था लेकिन जिस तरह से तरुण जल्दबाजी में साइन कर रहा था वो उन पेपर्स को पूरा कभी नहीं पढ़ने वाला था। लेकिन बात सिर्फ तलाक की हुई थी, अगर मेरे पास कंपनी और घर ही नहीं रहा तो मैं क्या करूंगा? तुम चाहो तो इस बच्चे को रख सकते हो लेकिन कंपनी मैं नहीं दूंगा। ऊपर से उस पर बहुत सा कर्ज भी है, ईशानी उसे कभी नहीं चुका पाएगी, तरुण रिक्वेस्टिंग वे में बोला, क्योंकि अभिमन्यु के सामने गुस्सा या जिद करने का तो कोई फायदा था नहीं। फिर तरुण जल्दी से ईशानी की तरफ पलटने लगा कि अभिमन्यु ने उसे फिर से पकड़ लिया था। तरुण वहीं से ही गिड़गिड़ाते हुए ईशानी से बोला, ईशानी तुम तो जानती हो ना हमारी कंपनी कितने घाटे में चल रही है, प्लीज इसे समझाओ। तरुण की बातें सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। उसने उसी अंदाज में कहा, तो मिस्टर तरुण दीवान को लगता है कि मैं एक छोटा मोटा कर्ज नहीं चुका पाऊंगा, वैसे कंपनी सच में घाटे में चल रही है ना? तरुण की नजरें झुक गई थीं, उसका सारा झूठ सामने आने लगा था, ऊपर से उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। अभिमन्यु ने उसे छोड़ा और इशारे से पेपर साइन करने को कहा, देखो ये कंपनी मेरे लिए सब कुछ है, मैं ईशानी को तलाक देने के लिए तैयार हूँ लेकिन कंपनी मेरे पास नहीं रहेगी तो मैं रोड पर आ जाऊँगा। ऊपर से तुम घर भी लेने की बात कह रहे हो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, तरुण ने अभिमन्यु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर अभिमन्यु की जगह कोई और होता तो शायद उसे इस वक्त तरुण पर दया आ जाती, लेकिन अभिमन्यु ने तरुण की पूरी हिस्ट्री निकलवा दी थी। एक पल के लिए युविका को भी लगा कि अभिमन्यु को ईशानी की कंपनी को तरुण के लिए छोड़ देना चाहिए। वैसे भी वो कोई बड़ी कंपनी नहीं थी और अभिमन्यु जैसे अमीर इंसान के लिए इतनी छोटी सी कंपनी कोई मायने भी नहीं रखती थी। युविका यहां तक कि ईशिका को भी लगा कि अभिमन्यु कंपनी को जाने देगा, लेकिन तभी अभिमन्यु ने तेज आवाज में कहा, 30 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, अगर तुमने सारे पेपर साइन नहीं किए तो तुम्हारी मौत को एक एक्सीडेंट दिखने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे भी क्या कहते हो तुम, अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं और किसी को कानोकान भनक भी नहीं होती। तरुण ने जल्दी से पेपर साइन कर दिए थे। अभिमन्यु ने उसके साइन करते ही कहा, हाँ तो तुम क्या कह रहे थे कि तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे? तुम चाहो तो बता सकते हो लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन ये बात बाहर आई उस दिन तुम्हें इस पूरी दुनिया में कोई काम नहीं देगा। तरुण को अभिमन्यु पर बहुत गुस्सा आ रहा था, अब तो उसने पेपर भी साइन कर दिए थे। उसने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, तो मैंने बिल्कुल सही सोचा था, तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, कैसे इंप्रेस किया इसने तुम्हें, मैंने देखा था तुम्हारी पत्नी दिखने में ज्यादा खूबसूरत है। हाँ हो सकता है ये बेड पर उससे अच्छी। तरुण एक बार फिर अपनी हदें पार करने वाला था कि अभिमन्यु ने उसका गला पकड़कर दबा दिया था। पृथ्वी ने गहरी सांस लेकर कहा, लगता है ये यहां से पिट कर ही जाएगा। पृथ्वी तेज कदमों से चलते हुए तरुण के पास आया और उसे खींचकर अभिमन्यु से अलग करके कहा, मैं इसे देख लूंगा। इतना कहकर पृथ्वी अपने आदमियों के साथ तरुण को वहां से ले जाने लगा। उसके बाद अभिमन्यु ईशिका की तरफ पलटते हुए बोला, हमारा काम हो गया है तो तुम्हें आगे से ये गेटअप लेने की कोई जरूरत नहीं है। परसों एक बिजनेस पार्टी है जहां मैं तुम्हें सबके सामने ले जाने वाला हूं और ये अनाउंस करूंगा कि तुम जिंदा हो। ईशिका इसके लिए अभी तक तैयार नहीं थी क्योंकि उसके असली दुश्मन सामने नहीं आए थे। हाँ, दिशांग के चक्कर में अर्पित जरूर आगे आ गया था, पर अभी तक वो उन तक पहुंची नहीं थी। राधिका भी नहीं मिली थी और ना ही उसकी कोई खबर आई थी। ईशिका ने तुरंत मना करते हुए कहा, लेकिन अभी माँ मिली नहीं है, वो लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, तो बेहतर यही होगा तुम उनकी नजरों से दूर रहो। मुझे नहीं लगता कि ईशानी को किसी तरह का खतरा होगा क्योंकि उसे मारने वाला शख्स आदर्श सिंघानिया था। बाकी मैंने कहा ना, सब मैं हैंडल करूंगा, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, अभिमन्यु ने हल्के सख्त अंदाज में कहा, जिस पर ईशिका ने हाँ में सिर हिला दिया था। उनकी लाइफ में धीरे धीरे चीजें सही हो रही थीं। हाँ, राधिका भले ही न मिली हो, लेकिन ईशानी को तरुण से छुटकारा मिल चुका था। साथ ही रूही की कस्टडी अब ईशिका और अभिमन्यु के नाम थी। अभिमन्यु के हिसाब से यही सही वक्त था जब ईशिका फिर से दुनिया के सामने आए और वो डिक्लेयर कर दे कि वो जिंदा है। जहां अभिमन्यु को लग रहा था कि उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, तो वहीं अर्पित अब दिल्ली आ चुका था। वो इस वक्त अंजलि के घर पर आदित्य के साथ था। गोवा में जो भी हुआ था उसके बारे में अर्पित ने आदित्य को बता दिया था। पूरी बात सुनने के बाद आदित्य बोला, अगर वो लड़की जिंदा है तो खुद ब खुद सामने आ जाएगी, क्योंकि परसों एक बड़ी बिजनेस पार्टी होने वाली है जो अभिमन्यु राजवंश थ्रो करने वाला है। अपने पति को खतरे में देखेगी तो वो खुद हमारे सामने आएगी और हमें उसे नहीं ढूंढना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अर्पित के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। अब उन्हें परसों होने वाली पार्टी का इंतजार था जो कई धमाके करने वाली थी।
मेरी ये कहानी का प्रोमो डाल रही हूँ जो आपको द रिप्लेस्ड ब्राइड के नाम से इसी ऐप पर मिल जाएगी। पढ़कर देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में शादी का समारोह चल रहा था। पैलेस की भव्यता से पता लगाया जा सकता था कि ये शादी कोई आम शादी नहीं थी। शादी का फंक्शन प्राइवेट था और बाहर मीडिया वालों की भीड़ दूल्हा दुल्हन की एक झलक के लिए बेकरार थे। अंदर फेरों की रस्म चल रही थी। वहां मौजूद सभी के चेहरे की खुशी से पता चल रहा था कि सभी उस शादी से बहुत खुश थे। तभी पंडित जी ने एक मंत्र पढ़ा और फिर दूल्हे से कहा, अब आप कन्या का घूंघट उठाकर उसे सिंदूर दान कीजिए। उससे पहले भगवान के सामने अपनी खुशी और मंगल जीवन की प्रार्थना कीजिए। लड़के ने हाथ जोड़े और आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगा, तो वहीं उसके पास एक लंबे घूंघट में बैठी लड़की मन ही मन बड़बड़ा रही थी। कहाँ हो तुम? आज यहाँ फेरों में मुझे नहीं तुम्हें होना चाहिए था। अगर इन्हें पता चल गया कि दुल्हन के जोड़े में तुम्हारे बजाय मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो हंगामा मच जाएगा। तुमने तो कहा था कि फेरे होने तक तुम आ जाओगी, पर तुम अब तक आई क्यों नहीं? लड़के ने हवन कुंड के आगे हाथ जोड़े और फिर लड़की का घूंघट उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उधर घूंघट के अंदर बैठी लड़की डर से कांप रही थी क्योंकि अगले ही पल उसका राज खुलने वाला था।